अब तो आप नाराज नहीं हैं ना? शान उसकी मासूमियत देखकर हैरान था। उस लड़की को अंदाज़ा भी नहीं था कि अभी-अभी उसने क्या किया और उसका क्या नतीजा हो सकता था। यहाँ उसने अपनी हरकत से शान की सांसों को अटका दिया था और अब भी उसको बस माफ़ी की पड़ी थी। इतनी मासूम सी शक्ल, उस पर उसकी इनोसेंट हरकतें, बेचारा शान उससे नाराज़ होता भी तो कैसे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी तो आरवी खुशी से एक बार फिर जैसे ही उसने गले लगने को हुई, शान ने एकदम से कहा, अगर अभी तुमने कुछ किया तो सोच लेना कि पिछली बार तो मैंने खुद को रोक लिया, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर मुझे ब्लेम मत करना। शान ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, पर इशारों में ही उसने उसको वार्न कर दिया, जो आरवी को समझ ही नहीं आया। वो कन्फ्यूज निगाहों से उसको देखने लगी। शान समझ गया कि उसकी मासूम सी बीवी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने गहरी निगाहों से उसको देखते हुए सर्द लहजे में आगे कहा, कभी भूल कर भी किसी लड़के के इतने करीब मत जाना, और जो अभी अभी किया वो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी मासूमियत को समझ सके ये ज़रूरी नहीं। आरवी अब भी कन्फ्यूज थी, उसको देखे जा रही थी। उसने तुरंत ही जवाब दिया, मैं भला किसी और के करीब क्यों जाऊंगी? आप मेरे पति हैं, आपके अलावा किसी को कोई हक नहीं मेरे करीब आने या मुझे छूने का। तो मुझे हक है तुम्हारे करीब आने का। शान ने आंखों में शरारत भरते हुए उसको देखा। आरवी ने उसकी बात सुनी तो आरवी पहले तो आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने हड़बड़ाहट में अपनी निगाहें झुका लीं, गालों पर सुर्खी दौड़ गई और शान उसको देखकर मुस्कुरा दिया। आगे दोनों की कोई बात नहीं हुई। आरवी अनुपमा जी से मिली और बहुत सी हिदायतों के बाद शान और अंशु के साथ घर के लिए निकल गई। अब आरवी को शान की कही हर बात का मतलब समझ आ चुका था। कहीं ना कहीं अनजाने में जो उससे हुआ उसका एहसास भी हो चुका था, इसीलिए अब वो शान से निगाहें मिलाने से भी कतरा रही थी और शान बस उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अंशु आरवी की गोद में सो रही थी। जब तक वो घर पहुंचे, अंशु की नींद खल चुकी थी। शान ने बाहर निकलने के बाद दूसरी तरफ से पहले अंशु को बाहर निकाला, फिर आरवी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आरवी ने अपनी निगाहें तक नहीं उठाई, बस उसका हाथ थामकर ध्यान से गाड़ी से बाहर आ गई। अंशु तो सबसे मिलने के लिए तुरंत ही अंदर की तरफ दौड़ गई। शान भी आरवी को उठाने लगा तो आरवी ने एकदम से उसको रोकते हुए कहा, रहने दीजिए ना, अंदर सब होंगे, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी। उसकी बात सुनकर शान रुक गया। उसने निगाहें उठाकर आरवी को देखा, घबराई निगाहों से उसे ही देख रही थी। शान ने उसकी असहजता भांपते हुए आगे कुछ नहीं कहा और उसके कंधे को पकड़कर उसको सहारा देते हुए उसके साथ चलने लगा। आरवी के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सुबह के 6:30 बज रहे थे तो अभी सर्वेंट्स ही आए थे, बाकी सब अपने अपने कमरों में थे, पर अर्पिता जी किचन में नाश्ता बना रही थीं। वो किसी काम से बाहर आई थीं, तभी उनकी नज़र हॉल से गुजरते शान और आरवी पर पड़ गई और उन्होंने एकाएक परेशानी भरे लहजे में कहा, आरवी बेटा क्या हुआ आपको? उनकी आवाज़ ने दोनों के ध्यान को अपनी तरफ खींचा और उनके आगे बढ़ते कदम रुक गए। इतने में अर्पिता जी तेज़ कदमों से चलते हुए उनके पास पहुँच गईं, फिर आरवी के पट्टी बंधे पैर को देखते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, बेटा आपके पैर में क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपके पैर में पट्टी क्यों बंधी है? कुछ तो बताइए बेटा। शान तुम ही बता दो, क्या हुआ है आरवी को? उनके पैर में पट्टी क्यों बंधी है? अर्पिता जी चिंता में एक के बाद एक सवाल किए जा रही थीं। न तो आरवी को ही उन्होंने कुछ कहने का मौका दिया और न ही शान कुछ कह सका। शान ने उनको इतना पैनिक करते देखा तो आराम से बोला, बड़ी माँ आप पहले शांत हो जाइए, इतनी भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस हल्की सी चोट है, अगर पैर को आराम दिया तो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। आरवी जी ने उसके चुप होते ही चिंतित स्वर में कहा, वो तो ठीक है बेटा, पर इनके पैर में चोट लगी कैसे? उनके सवाल को सुनकर शान को वो पल याद आ गया जब उसने आरवी के पैरों से बहते खून को देखा था। इसके साथ ही उसका मन कसैला हो गया, चेहरे पर अजीब की बेचैनी झलकने लगी। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सहजता से बोला, बड़ी माँ वहाँ काम करते हुए पैर में छोटा सा कांच लग गया था, चिंता वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शान ने एक बार फिर छूत कहा। उसने कोशिश की थी कि अर्पिता जी शांत हो जाए, पर वो अब भी परेशान थी। उन्होंने आरवी को वहीं हॉल में लगे सोफे पर बिठा दिया। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, ध्यान से काम करना चाहिए था ना आपको, ऐसे लापरवाही करना ठीक नहीं। आरवी अब कुछ कह ना सकी और उसने अपना सर झुका लिया। शान ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो अर्पिता जी को देखकर बोला, रहने दीजिए ना बड़ी माँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है, फिर वहाँ आंटी ने भी डांटा था और अब आप ही उसको डांट रही हैं। शान को आरवी की तरफदारी करते देख अर्पिता जी और आरवी दोनों ही हैरानी से आंखें पली पड़ी करके उसको देखने लगी। तब उसको एहसास हुआ कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था। उसने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा, वो बस यूं ही कह दिया, मेरा मतलब था कि। उसने कोशिश की पर समझ ना सका कि कहे क्या, इसीलिए उसने तुरंत ही दूसरे तरफ जाते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ऑफिस भी जाना है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जहाँ आरवी उसको असमंजस भरी निगाहों से देखती रह गई, वहीं अर्पिता जी उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुरा उठी। आरवी ने उसको जाते देखा तो अचानक ही पीछे से तेज आवाज में बोली, मुझे भी लेकर चलिए ना, अंशु को स्कूल के लिए रेडी करना है। शान जो सीढ़ियां चढ़ रहा था वो एकदम से रुक गया और आरवी की तरफ पलटते हुए बोला, खबरदार जो अपने कदम नीचे रखे, चुपचाप वहीं बैठो, अंशु को मैं रेडी कर दूंगा। आरवी ने मुंह बना लिया और शान उसको घूरते हुए ऊपर चला गया। अर्पिता जी ने आरवी के फूले हुए गाल देखे तो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, शान ठीक कह रहे हैं बेटा, अभी आपको अपने पैरों पर जोर नहीं देना चाहिए, तभी जख्म जल्दी भरेंगे। आरवी ने हामी भर दी तो अर्पिता जी किचन में चली गईं। कुछ देर बाद शान अंशु को रेडी करके नीचे लेकर आया। तब तक सभी वहां आ चुके थे और आरवी अब भी वहीं बैठी थी जहां अर्पिता जी ने उसको बिठाया था और उसके सामने बैठे सुभाष जी और सुयश जी उससे बात कर रहे थे। शान आरवी को संभालकर डाइनिंग एरिया में लेकर गया। फिर नाश्ता करने के बाद वो उसको वापस हॉल में बिठाते हुए सख्त से बोला, जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमर्जी चलाओ, अगर तुमने अपने पैर पर प्रेशर डाला तो सोच लेना। शान ने उसको धमकी दी, फिर छाया को देखकर बोला, ध्यान रखना अपनी भाभी का, बेवजह कदम नीचे ना रखे। छाया ने तुरंत ही हामी भर दी तो शान अंशु को लेकर वहां से चला गया। आरवी मुंह बनाकर जाते हुए शान को देखने लगी। छाया ने उसका चेहरा देखा तो मुस्कुराकर बोली, भाभी भैया आपकी कितनी परवाह करते हैं ना। आरवी के कानों में उसकी कही शब्द पड़े तो उसके लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई। शान ने ऑफिस जाकर कार्तिक को वो फोटो दी और सब समझाने के बाद काम में लग गया। सुबह से शाम हो गई तो शान वापस घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो अंशु के साथ बाकी सभी बाहर गार्डन में ही बैठे थे, पर आरवी यहाँ नहीं थी। वो सबसे मिला फिर अंदर चला गया। उसकी निगाहें हर जगह आरवी को ढूंढ रहा था, जो सभी समझ रहे थे, पर जानबूझकर किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। शान ने अपना ब्लेजर खोला और टाई की नोट ढीली करते हुए लगातार अपनी निगाहों को घुमाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने रूम में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें।